नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर हुई गोलीबारी पर भारत ने ईरान के सामने कड़ा विरोध जताया। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में एक बार फिर होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद पर एक महीने की प्रतिबंध में छूट दी। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने युद्धपोत आपूर्ति के लिए $7 अरब के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज शाम नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ बैठक के लिए भारत में ईरान के राजदूत डॉ मोहम्मद फतहली को बुलाया। बैठक के दौरान श्री मिश्री ने भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों पर हुई गोलीबारी को लेकर भारत की ओर से गहरी चिंता व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
विदेश सचिव ने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व का उल्लेख किया। श्री मिश्री ने याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत जाने वाले कई जहाजों के सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान की है। व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने ईरान के राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत के विचार से अवगत कराएं और जल डमरू मध्य से भारत जाने वाले जहाजों की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पुनः शुरू करें। मंत्रालय ने कहा कि ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी के जवाब में होर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर से बंद करने की घोषणा की है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज कहा कि होर्मुज पर पहले की तरह उसका नियंत्रण है। ईरान ने चेतावनी दी कि उसके बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रहने तक होर्मुज से आवागमन अवरुद्ध रहेगा। दूसरी ओर अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी सेना ने 23 जहाजों को वापस लौटने का आदेश दिया है। एक अन्य घटनाक्रम में ब्रिटेन की सेना ने बताया कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की। जहाज और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने संबंधी छूट को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार ये छूट अब 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में मौजूद रूस के तेल से संबंधित लेन देन के संबंध में 16 मई तक के लिए है। इससे पहले अमेरिका ने 5 मार्च से शुरू होने वाले एक महीने के लिए रूसी तेल खरीदने के लिए भारत को छूट दी थी। कुछ अन्य देशों के लिए भी अमरीका ने 11 अप्रैल तक जारी रहने वाली ये छूट बढ़ाई थी। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीका रूस और ईरान के तेल के लिए और कोई छूट जारी नहीं करेगा। पिछली रियायत से लगभग 150 मिलियन बैरल रूसी तेल दुनिया भर के बाजारों में पहुंचा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को निशाना बनाकर किए गए हमले में फ्रांस का एक सैनिक शहीद हो गया और 3 अन्य घायल हो गए। श्री मैक्रों ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में कहा कि फ्रांस लेबनान के अधिकारियों से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान के साथ अपने दायित्वों को पूरा करने की मांग करता है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि हमले में 3 अन्य सैनिक भी घायल हुए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। यूक्रेन में रात भर चले रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। ये घटना पूर्वी डोनेस्टस क्षेत्र के माइकोलेव में हुई। देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हुए हमलों में कम से कम 26 अन्य लोग घायल हो गए। इन हमलों में ओडिशा में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने रात भर में 219 ड्रोन दागे, जिनमें से 190 को नष्ट कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन के ड्रोनों ने औद्योगिक क्षेत्रों पर हमला किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडलैक्स एट ए आई आर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। शुभ दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने युद्धपोत आपूर्ति के लिए $7 अरब के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स ने कहा कि यह समझौता युद्धपोत आपूर्ति के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौते के तहत जापान ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को 3 उन्नत मुगामी श्रेणी के मल्टी रोल फ्रिगेट की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा 8 युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया में ही निर्मित किए जाएंगे। इन युद्धपोतों को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में तैनात किए जाने की संभावना है। बलूचिस्तान में 5 नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई में हत्या कर दी गई और 4 अन्य लोगों को पाकिस्तानी सेना ने जबरन लापता कर दिया। बलूच यकजेहती कमेटी के अनुसार 7 वर्षीय छात्र हातिम बलूच का शव पंजगुर जिले में बरामद किया गया। हातिम बलूच को पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर उठा ली गई थी। मानवाधिकार संगठन ने बताया कि एक अन्य घटना में पाकिस्तानी सेना ने फर्जी मुठभेड़ में 4 बलूच नागरिकों की हत्या कर दी थी। मानवाधिकार संगठन ने समूचे बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्रूर और सुनियोजित तरीके से बलूचों की हत्या की जा रही है। काठमांडू में घाटी में ऐतिहासिक और जीवंत बिस्केट यात्रा का भक्तपुर में समारोह पूर्वक समापन हुआ। 9 दिनों का ये समारोह नेपाली वर्ष के समापन के साथ शुरू होकर नव वर्ष के पहले 4 दिनों तक चलता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होकर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं।
भक्तपुर में 9 दिन चले भव्य उत्सव के बाद बिस्किट यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के अंतिम दिन लकड़ी के खंभे लिंगों को गिराया जाता है, जिसे उत्सव की शुरुआत में स्थापित किया गया था। यात्रा में शहर के विभिन्न हिस्सों से आए युवाओं के समूहों ने पारंपरिक संगीत की धुनों के बीच भद्रकाली के रथ को खींचा। बिस्किट यात्रा केवल सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय की एकता और सामूहिक भावना को भी दर्शाती है। इस यात्रा का समापन पुराने वर्ष के अंत और नव वर्ष के आरंभ का संकेत है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। पड़ोसी देश की ये उनकी पहली यात्रा होगी। श्री राधाकृष्णन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक से मुलाकात करेंगे। वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉ. हरिणी अमरसूरिया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मिलेंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के तमिल समुदाय तथा श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के तमिल नेताओं से बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और भारत की सहायता से निर्मित आवासों को वर्चुअल माध्यम से तमिल समुदाय के लाभार्थियों को सौंपेंगे। बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु के 176 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने अंतिम ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली के ट्रिस्टन स्टब्स को नाबाद 60 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 7 ओवर में 3 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 194 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय ध्वज वाले 2 जहाजों पर हुई गोलीबारी पर भारत ने ईरान के सामने कड़ा विरोध जताया। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में एक बार फिर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अमरीका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद पर 1 महीने की प्रतिबंध में छूट दी। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने युद्धपोत आपूर्ति के लिए $7 अरब के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।